एहेस्केल अध्याय 34। अध्याय 34 में परमेश्वर इसराइल के अविश्वासी चरवाहों के विरुद्ध कहता है, उन्होंने सेवकाई को त्याग दिया था जबकि आम जनता उन अगुओं की ओर मार्गदर्शन हेतु निहारती थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मरकुस अध्याय 10 पद 42 से 44, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारे सेवक बने। यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए और कहा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं तुम्हारा प्रभु होकर तुम्हारा सेवक हूं तो तुम्हें भी सेवक बनना होगा। यीशु ने सेवकाई में सेवक नीति सिखाई। सेवकाई का अर्थ यही है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम मसीह की देह के वास्तविक सेवक हो, परंतु प्रभुता करना और वरिष्ठता का स्वभाव आ जाना स्वाभाविक है, जो सेवक पद का दुरुपयोग है। सेवा की अपेक्षा प्रभुता सेवकों का स्वभाव बन जाता है। ऐसी स्थिति में वे विलासिता के लोभी हो जाते हैं और परमेश्वर की सेवा में अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं। एहेस्केल अध्याय 34 पद 1 और 2, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर जब भी हाय कहता है तो सावधान, ये समस्या की चेतावनी है। पद 2 में आगे लिखा है, हाय इसराइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? वे सेवक जो अपना लाभ देखते हैं कलीसिया का नहीं। ये बड़े दुख की बात है, परंतु कटु सत्य भी है। आज कितने ऐसे सेवक हैं जो स्वार्थ में जीते हैं, उन्हें परमेश्वर की बुलाहट नहीं है और ना ही उनका मन सेवकाई में लगता है। हाय इसराइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? एहेस्केल अध्याय 34 पद 3, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। यीशु ने पत्रस से कहा था, योहन्ना अध्याय 21 पद 15, मेरी मेमनों को चरा। बाद में पत्रस ने कलीसियाई प्राचीनों को लिखा, पहला पत्रस अध्याय 5 पद 2, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। आज कलीसिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्मिक भोजन, भेड़ों को चरा। पत्रस को दिया गया यीशु का मिशन, परमेश्वर उन पर दोष लगाता है। एहेस्केल अध्याय 34 पद 4, तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को फेर लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे परमेश्वर की भेड़ों पर प्रभुता कर रहे थे। वे दुर्बल, रोगी, निराश, कष्टिन और खोई हुई भेड़ों की सुधी नहीं ले रहे थे। वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसका परिणाम हुआ। एहेस्केल अध्याय 34 पद 5 से लेकर 7 तक, वे भेड़े चरवाहे का ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था ना कोई उनको ढूंढता था। इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, क्योंकि उससे बड़ा कोई और नहीं है। इसकी गंभीरता पर ध्यान दीजिए। एहेस्केल अध्याय 34 पद 8 से लेकर 10 तक। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही अपना पेट भरा, इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। परमेश्वर उनके संपूर्ण धर्म तंत्र को और याजकों को मिटा डालेगा, क्योंकि वे भेड़ों की सुधि ना लेकर स्वयं का पेट भरते थे। हमने इतिहास में देखा है कि एली के दुराचारी पुत्र कैसे जोर जबरदस्ती से लोगों की बलि में से अच्छा भाग पहले ही छीन लिया करते थे। विरोध करने पर वे उन्हें पीटते थे। इस कारण लोग मंदिर में बलि चढ़ाने आना ही नहीं चाहते थे। याजक परमेश्वर के सामने लोगों के लिए खड़े होते थे और उनके लिए परमेश्वर का रूप थे। इस कारण परमेश्वर इस भ्रष्ट तंत्र को ही समाप्त करने की प्रतिज्ञा करता है, आगे को वो उनका आहार ना हो। एहेस्केल अध्याय 34 पद 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। परमेश्वर कहता है, मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। क्या आप प्रसन्न नहीं हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है? उसने हमें ढूंढा है, वो हमें घायल अवस्था में उठाकर लाया था। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 पद 11, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और वो कहता है, मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, तुम मेरी भेड़े हो, तुम मेरे लोग हो। भेड़े चरवाहे की आवाज पहचान कर उसके पीछे हो लेती है। आप उसकी भेड़े हैं, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। एहेस्केल अध्याय 34 पद 13, और मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा, और इसराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। निस्संदेह ये भविष्यवाणी इसराइल राष्ट्र के लिए है, परंतु उसका तात्पर्य परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंधों से भी है, परमेश्वर का अपने लोगों से, कलीसिया का मसीह से। ये भविष्यवाणी इसराइलियों के विसर्जन की है, जिसका मूल यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में है। ये उस युग के इसराइली अगुओं का षड्यंत्र था। जन साधारण तो उसे आनंद से सुनता था, परंतु धर्मगुरु उसे मसीहा स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वे तो उसे मार डालना चाहते थे। वे सोचते थे कि यदि जन साधारण उसके अनुयायी हो गए तो वे किसे लूटेंगे और किस पर राज करेंगे। हो सकता है कि रोमी सत्ता उन्हें हटा ही दे। महायाजक ने कहा, पूरे देश के लिए एक मनुष्य का मर जाना उचित है। वो नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। इन स्वार्थी अगुओं के कारण ही परमेश्वर अपनी भेड़ों को एकत्रित करने की बात करता है। ये आज पूरा हो रहा है। परमेश्वर उन्हें लौटाकर ला रहा है और उनमें काम करने की तैयारी कर रहा है। एहेस्केल अध्याय 34 पद 13 से लेकर 15 तक। और मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी अच्छी चराई में चराऊंगा और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा। यीशु के विषय में की गई उस सुंदर भविष्यवाणी को याद कीजिए। यशाया अध्याय 40 पद 11। वो एक चरवाहे के नाई अपने झुंड को चराएगा। वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। अति उत्तम भविष्यवाणी है, मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा। एहेस्केल अध्याय 34 पद 15 से लेकर 21 तक। और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फेर लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाई न्याय से करूंगा। और हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेड़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? और क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देख मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारों को पंजर और कंधे से यहां तक ढकेलते और सिंह से यहां तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती है। धनवान गरीबों का शोषण करते थे। ये धार्मिक अगुए धनवान थे। उन्होंने ही भेड़ों को तितर बितर किया। एहेस्केल अध्याय 34 पद 22 से लेकर 24 तक। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी। और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। इसे दाऊद का पुनरुत्थान ना समझ लिया जाए। परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि उसका वंश सदैव सिंहासन पर बैठेगा जो यीशु में पूरी होती है। यरमिया भी यरूशलेम में यही कहता है कि उन लोगों पर दाऊद के वंश से एक धर्मी शाखा आकर राज करेगी, वो भी झूठे चरवाहों को दोष देकर महिमा से पूर्ण सच्चे चरवाहे की भविष्यवाणी देता है। यशाया अध्याय 9 पद 6 और 7 में भी यही लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। पौलुस रोमियों 1 में कहता है कि देह के अनुसार दाऊद के वंश से और आत्मा के अनुसार परमेश्वर का पुत्र सामर्थ में आकर दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और चरवाहे के हृदय द्वारा अपने लोगों पर राज करेगा। कुछ लोग दाऊद के बैतशीबा के साथ व्यभिचार और उग्र स्वभाव को देखकर प्रश्न करते हैं कि वो कैसे परमेश्वर के मन का मनुष्य था। उसने उरिया को मरवा दिया था। इसका कारण था कि दाऊद के पास एक चरवाहे का हृदय था। परमेश्वर यही चाहता है कि शासक के मन में अपना नहीं भेड़ का कल्याण बसा हो। दाऊद ने सदैव एक चरवाहे के हृदय द्वारा राज किया था। शौल को राज करने का घमंड ले डूबा और उसका वंश कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, परंतु दाऊद से परमेश्वर प्रसन्न था। अतः ये भविष्यवाणी मसीह के आगमन और अगुवाई की है। एहेस्केल अध्याय 34 पद 25, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। परमेश्वर के राज्यकाल में शेर मेमने के साथ बैठेगा और छोटा बच्चा उनकी अगुवाई करेगा। मैंने सदैव सोचा है कि उस समय शेर कैसा प्यारा पालतू जानवर होगा, बच्चे शेर पालकर कैसे खुश होंगे, उस पर चढ़ेंगे, उसके बाल खींचेंगे, अपने राज्य में प्रभु सबको पहले जैसा कर देगा, शांति सर्वस्व व्याप्त होगी, क्या मनुष्य क्या पशु, पृथ्वी पर हिंसक पशु रहेंगे ही नहीं। एहेस्केल अध्याय 34 पद 25 में आगे लिखा है, वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे, भय नाम की चीज नहीं रहेगी। एहेस्केल अध्याय 34 पद 26, और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशीषों की वर्षा होगी, होवेगी बरकत की बारिश। ये गाना हमने उस भावी घटना से उधार लिया है जब परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी का पुनरुद्धार करेगा। एहेस्केल अध्याय 34 पद 27, और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे, जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को फिर से इसराइल देश में लेकर आएगा, तब वे जानेंगे कि वो यहोवा है, तब वो अपना राज्य स्थापित करेगा। एहेस्केल अध्याय 34 पद 28, वे फिर जाति जाति से लूटे ना जाएंगे, यहूदी जहां भी रहे हैं उन्हें सब ने सताया है, वे एक श्रापित जाति और ठट्टों का कारण रहे हैं। यहूदी विरोध पूरे संसार में बढ़ रहा है। आपने यूरोप में उनके आराधनालयों पर बम डालने का समाचार सुना होगा। जर्मनी में फिर से यहूदी विरोध बढ़ रहा है। अमेरिका में भी हॉलीवुड क्षेत्र में उनका विरोध देखने को मिलता है, परंतु उस समय वे जाति जाति से लूटे ना जाएंगे। एहेस्केल अध्याय 34 पद 28 में आगे लिखा है, और ना वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे, सब पशु पालतू हो जाएंगे। एहेस्केल अध्याय 34 पद 28 और 29, वे निडर रहेंगे और उनको कोई ना डराएगा, और मैं उनके लिए महान भारी उपजाऊंगा। ये महान भारी मसीह यीशु है। एहेस्केल अध्याय 34 पद 29 में आगे लिखा है, और वे देश में फिर भूखे ना मरेंगे, और ना जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। वे ना तो श्रापित होंगे और ना ही अन्य जातियों में लज्जित होंगे। हम अपने यहूदी गाइड के साथ बातें कर रहे थे। उसका पालन पोषण और जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। हम उसे मसीह गवाही दे रहे थे, तब उसने कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि मसीही विश्वासियों का मेरा पहला अनुभव क्या है? हमने कहा, क्यों नहीं। उसने कहना आरंभ किया, स्कूल से घर जाते हुए मुझे रोज ही जी जान लगाकर दौड़ना पड़ता था, नहीं तो वे मसीही लड़के मुझे जान से मार डालते, क्योंकि वे मुझे यीशु का हत्यारा कहते थे। वे मुझे बड़े बड़े पत्थरों से मारते थे और मौके की तलाश में ही रहते थे कि मेरी पिटाई करें। वे मुझे यीशु का हत्यारा कहते थे। ये मेरे मसीहों के साथ पहला अनुभव है। ऐसी स्थिति में उन्हें मसीह की गवाही देना कठिन होता है, क्योंकि मसीही समाज ने उन्हें पहले ही अपनी गवाही दे दी है। ये बड़े दुख की बात है कि अधिकांश यहूदी विरोध की जड़ें चर्च में हैं। सत्य तो ये है कि मसीही जन इसराइल के बड़े ऋणी हैं, दूसरे शब्दों में यहूदियों के ऋणी। वस्तुतः हमारा मसीहा हमें उन्हीं से प्राप्त हुआ है। एहेस्केल अध्याय 34 पद 30 और 31, और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूं, और वे जो इसराइल का घराना है वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।